हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 7। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। शब्दों का अर्थ, जितात्मनः अर्थात जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का, परम आत्मा अर्थात परमात्मा समाहितः पूर्ण रूप से प्राप्त, शांति अर्थात शीत अर्थात सर्दी, उष्ण अर्थात गर्मी, सुख अर्थात सुख, दुःखेषु तथा दुख में, तथा भी मान अपमान, मान और अपमान में। अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च उद्देश्य को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता ही है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। हम श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग के द्वारा भगवत प्राप्ति की विधि बता रहे हैं। और अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें भगवान ने क्या बताया है कि योग पद्धति में दो स्टेज, आरुरुक्ष और आरुढस्य, ये दो पद्धतियां बताई। और उसमें आरुरुक्ष क्या है, जो बिगनिंग स्टेज है, और आरुढस्य जो एडवांस स्टेज है। ठीक है, उसमें क्या है भगवान ने बताया श्लोक नंबर 4 में, यदा ही ने इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जो योग आरूढ़ होता है उसको यदा ही नेन्द्रियस्येषु, वो इंद्रिय की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, न कर्म स्वनुषज्यते, कर्म सकाम कर्म भी नहीं करता, और सर्व संकल्प संन्यासी, सारे संकल्प कोई भी नहीं करता, इंद्रिय तृप्ति की हृदय में कोई इच्छा भी नहीं होती, उसे योग आरूढ़, ये उच्चतम स्थिति है। लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने से पहले क्या करना होगा, मन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि मन ही तो है जो हमें इंद्रिय विषयों की ओर भोगने के लिए उत्साहित या प्रेरित करता है। तो भगवान ने बताया कि देखो मन जो है योग आरूढ़ स्थिति तक पहुंचने का सबसे बड़ा ये बाधा है। तो फिर अगर ये मन आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, मन को छोड़ना नहीं है, ये मन ही है जो आपका उद्धार करेगा और ये मन ही है जो आपका पतन करेगा। तो आपकी चॉइस है आप मन को क्या कराते। भगवान ने बताया श्लोक नंबर 5 में, उद्धरेरात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधयेत्। अगर आत्मा का उद्धार करना है तो भी मन ही से होगा, और आत्मा का यदि पतन करना है अवसादयेत तो भी मन के द्वारा ही होगा। आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। मन ही जीव का सबसे बड़ा बंधु है, मित्र है, और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है यानी शत्रु। और आगे भगवान ने 6 में तो बहुत अच्छा बताया, भगवान ने कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कि जिसने मन को जीत लिया है वो ना, उसके लिए मन जो है वो सबसे बड़ा उसका मित्र है, और अगर कोई मन को जीत नहीं सका है तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। अब ये कैसे खबर पड़ेगी कि उसने मन को जीता है अथवा नहीं जीता है? तो भगवान बता रहे हैं जितात्मनः प्रशांतस्य। जित आत्मनः यानी जिसने मन को जीता है वो प्रशांतस्य, प्रशांतस्य मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत होगा, उसके अंदर रियल शांति। अगर कोई रियल में जिन्यन मन की शांति किसी को प्राप्त हो जाती है तो हम समझ सकते हैं कि उसने मन को जीत लिया है। वास्तव में तो शास्त्र क्या कहता है, दुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशपि महामुनि। बहुत सारे मुनि, बहुत सारे कर्मी, बहुत सारे करोड़ों करोड़ों अष्टांग योगी अगर एकत्रित हो जाए तो उसमें कोई एक मन को जीतने वाला कोई एक ही होगा जिसने अपने हृदय को पूरी तरह से प्रशांत कर दे, शांत हो गया उसका मन। शांत का मतलब होता है शांत हो जाना, और प्रशांत का मतलब होता है कि कभी भी उसमें हलचल या विचलित होने का कोई संभावना भी नहीं होगी, ऐसा प्रशांत उसका मन हो जाए। परंतु मन जो है वो शास्त्र कहता है कि एक झील की तरह है, जैसे इसे उदाहरण दिया जाता है कि मन एक झील की तरह है, और अगर योगा का अभ्यास किया जाता है तो वो ऐसे है जैसे इंद्रिय विषय कैसे हैं, मिट्टी की तरह है। जैसे अब झील में मिट्टी होती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हवा नहीं होती है तो मिट्टी बैठ जाती है नीचे और पानी एकदम स्वच्छ दिखने लगता है। उसी तरह से योगा के अभ्यास से क्या होता है, इंद्रिय विषयों के ऊपर जो हमारी आसक्ति होती है ना जीव की, वो दब जाती है, क्योंकि योगासन कर रहा होता है तो ऐसा करने से वो आसक्ति जो मिट्टी की तरह होती है वो अंदर दब जाती है। और लेकिन कभी ऐसा होता है यदि उसके सामने इंद्रिय विषय आ जाते हैं तो फिर मन विचलित हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मन भौतिक ये वस्तुएं हैं जो बहिरंगा माया है उसके द्वारा अगर गुमराह हो जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में फिर से उलझ जाता है, क्योंकि मन को सही तरह से कंट्रोल किया नहीं उसने, और भौतिक वस्तुओं की ओर जब उसका आकर्षण वापस से उत्पन्न हो गया तो फिर वो विपत्त हो जाता है। लेकिन आत्मा क्योंकि परा प्रकृति है, भगवान की, भगवान बताते हैं कि ये जो आत्मा परा अपरेयम इतस्त्वन्यान प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो येदम धारयति जगत। भगवान बताते हैं 7.5 में कि बाकी सब जो भौतिक प्रकृति है वो तो मेरी अपरा प्रकृति है, परंतु जीव मेरी परा प्रकृति है। और भगवान की ये जो अंतरंग शक्ति, क्योंकि बहिरंग शक्ति क्या है, अपरा प्रकृति, जब उसमें जीव उलझ जाता है तो विपत हो जाता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ना। फिर उसको क्या करना, क्योंकि मन अटका नहीं है ना भौतिक वस्तुओं में, मन भगवान की सेवा में अटका हुआ है, भगवान के नाम गुण लीलाओं में अटका हुआ है, तो उसके मन में और कोई विचार ही नहीं आएगा, कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा कि मैं और कोई कार्य करूं। तो वास्तव में जब जीव कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, जब भगवान की भक्ति स्वीकार करता है, तो भक्ति के द्वारा वो जो समस्त हलचल जिसके द्वारा मट्टी ऊपर आने वाले ऊपर आ जाती है और झील का पानी मटियाल आ जाता है, वापस से डस्टी हो जाता है, वो हलचल ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण ही नहीं है ना, वरना तो क्या किया था, आकर्षण को दबाया था। लेकिन आकर्षण को दबाने से कुछ नहीं होगा, आकर्षण को डाइवर्ट करने से होगा, आकर्षण ही अलग हो गया। अगर आपको वो वस्तु अच्छी नहीं लगेगी तब आप उसकी ओर नहीं देखोगे, लेकिन वो अच्छी लग रही है लेकिन अपने आप को कृत्रिम प्रयास कर रहे हो भौतिक वस्तुओं से या इंद्रिय तृप्ति से रोकने का, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि जैसे ही इंद्रियों को अवसर प्राप्त होगा तो मन को विचलित कर ही देंगी। रे भगवान ने बताया था 2.60 में, प्रमाथिने हरन्ति प्रसभं मनः। अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल है कि तथा इतनी वेगवान है कि वे उस विवेकी और विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हल लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भले ही हरन्ति प्रसभं मनः, भले वो कितना ही पुरुष विपश्यता बहुत ज्यादा विवेकी हो, उसको ज्ञान हो कि यदि मैं ये मैंने इंद्रियों की या मन की बात मानी तो मेरा पतन हो जाएगा, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो उसके मन को भी हर लेती है। परंतु इसको दूर कैसे किया जाए, वो भगवान बोलते हैं ये आकर्षण को समाप्त करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2.59 में भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रियों से भले ही निवृत्त हो जाए परंतु उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बाकी रहती है ना। अगर हम भले ही योगा के कृत्रिम तरीकों से इंद्रिय भोग से हम अगर निवृत्त हो भी जाते हैं तो भी हृदय के अंदर एक आशा बनी रहती है कि ये कार्य मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन काश यहाँ पर रसगुल्ले होते, मिठाइयाँ होती, जलेबियाँ होती या इंद्रिय भोग की अन्य वस्तुएं होती तो मैं उनका टेस्ट लेता, पिज्जा बर्गर और ये चाट इत्यादि। परंतु भगवान आगे बताते बहुत सुंदर, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता, उसको उत्तम टेस्ट प्राप्त हो जाता है भक्ति का, तो फिर दोबारा से उसकी गिरने का या मन के अंदर वापस से भौतिक इच्छाओं को उत्पन्न करने का कोई भी चारा नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कहा कि यदि मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा के पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। वास्तव में भक्तों, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि योगा का मतलब मन को जीतना है, परंतु इस योगा, ये जो अष्टांग योग है, उससे कई टाइम ज्यादा अगर भक्ति योगा के द्वारा हम मन को जीतने का प्रयास करते हैं, तो फिर क्या होता है, भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य, मन प्रशांत हो जाता है, फिर उसके भटकने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि उसको आस्वादन हो जाता है, उसको टेस्ट आने लगता है, उसको प्रेम हो जाता है। और जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो स्वतः उसकी सेवा करने लगते हैं ना। उसी तरह से मन यदि भगवान में अनुराग प्राप्त कर लेता है तो फिर भगवान की सेवा में लग जाता है। उसी तरह से फिर क्या होता है, आगे भगवान कहते हैं परमात्मा समाहितः, जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, तो यदि जब प्रेम हो जाता है तो उस भक्ति और प्रेम के द्वारा हम भगवान परमात्मा समाहिता पूर्ण रूप से उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अगर भगवान को देखने की बात की है कि परमात्मा को अपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हो, उसको देख सकते हो। देखो यदि मन पवित्र नहीं होगा तो भले ही कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए मगर दिखेंगे नहीं, लेकिन पवित्र मन से हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा, क्योंकि भौतिक इंद्रियों भौतिक विषयों की ओर आसक्त नहीं है और मन जीता हुआ है, प्रेम हो गया परमात्मा से, भगवान से अनुराग हो गया, तो हृदय के अंदर बैठा हुआ भगवान दिखने लगता है। लेकिन वो इन नेत्रों से नहीं दिखता, वो आत्म चक्षुओं से दिखता है। अभी वो आत्म चक्षु हमारी क्या है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे तो वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया जो जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, है ना। वैसे तो हम सबका यही कारण है इस संसार में आने का कि हम भगवान की आज्ञाओं का पालन करें, भगवान की सेवा करें। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तो वो जीव क्या करता है, इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाओं के कारण हमारे आत्मा के जो चक्षु हैं वो मलिन हो जाते हैं, दृष्टि इतनी मैली हो जाती है जिसके कारण मन में बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं होता, और इसलिए हम हृदय में बैठे हुए भगवान को नहीं देख सकते। और योगा का मतलब क्या है कि हम अपनी दृष्टि को इतना स्वच्छ बनाएं कि जिसके द्वारा हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सके, है ना, भगवान के साथ कॉन्टेक्ट हमारा हो सके और हम भगवान को देख सकते। अभी वो कॉन्टेक्ट टूटा नहीं है, भगवान का और हमारा संबंध बना हुआ है, लेकिन हमने अपनी ओर से क्या किया है, उस संबंध को बुला दिया है। भगवान के द्वारा वो संबंध टूटा नहीं है, टूट नहीं सकता, जीव का और भगवान का संबंध कभी भी नहीं टूट सकता, ये शाश्वत संबंध है। लेकिन हम कभी ऐसा होता है ना कि कोई भूल जाए कि बहुत बचपन से अगर किसी का पुत्र जो है किसी मेले में खो जाए और वो भूल जाए बेटा कि मेरे माता पिता, माता पिता को कभी भी संतान भूल नहीं सकते अपनी संतान को, लेकिन संतान कभी भूल जाए अपने मस्ती में, फिर पता भी नहीं होगा उसके माता पिता कैसे थे क्योंकि बचपन में उससे खोए थे। उसी तरह से भगवान का करोड़ करोड़ जन्मों से हमारा रिश्ता जो है, भगवान से हम दूर हो गए तो भूल गए हैं, लेकिन योगाभ्यास से क्या होता है कि हम उस संबंध को पुनः निर्माण करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन वो योगा अभ्यास के द्वारा क्योंकि भौतिक वस्तुओं से अभी तक अट्रैक्शन बनी रहने का चांस होता है, लेकिन क्योंकि अगर हम वही संबंध को भक्ति के द्वारा निर्माण करने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भक्त हर समय भगवान को ही देखता है, हर जगह भगवान को रियलाइज करता है, हर समय भगवान से बात करता है, भगवान को खाए बगैर खाता नहीं, भगवान को सुलाए बगैर सोता नहीं, भगवान को कोई ओकेजन भी होता है तो पहले भगवान के लिए वस्त्र के विषय में सोचता है, भगवान के अतिरिक्त उसके पास सोचने के लिए और कुछ होता ही नहीं है। और जो योगा होता है वो तो कृत्रिम अभ्यास है, सोचने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो मन को लगा, लेकिन भक्त के मन में और कुछ आता नहीं है। और इस चीज को भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बताएंगे श्लोक नंबर 30 और 31 में। देखो हम इसके साथ साथ चलेंगे ना तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। भगवान कहते हैं 30 में 6.30 में भगवान कहेंगे आगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मुझे देखता है, हर एक चीज में मुझे देखता है कि हर एक चीज। अब ये देखो इसमें भगवान ने क्या बताया, हर एक वस्तु में मुझे दिखता है। इसका मतलब ये नहीं मायावादियों की तरह हम हर हर वस्तु को क्या सोचे कि ये हर वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य भगम जगत मिथ्या, ऐसा नहीं। भक्त भगवान को हर वस्तु में कैसे देखता है कि हर वस्तु भगवान से कनेक्टेड है, ये सब वस्तुओं का आधार भगवान है, ये सब वस्तुओं की सत्ता इसलिए है, उनका होना इसलिए है क्योंकि भगवान की शक्ति है ये। तो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हमें मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, हर किसी वस्तु में मुझे देखता है, तस्या हम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ, उसे हर जगह दिखूंगा मैं खुद, सचमे न प्रणश्यति, और वो भी मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता है। और ऐसा भगवान कहते हैं ऐसा कौन है, आगे बताते 31 में, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वात्मतिस्थितं सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। वास्तविक योगी भगवान कहते हैं कि वास्तविक योगी क्या है, सर्वभूतस्थितं यो मां, जो हर प्राणी में हर जगह पर मुझे स्थित देखता है, प्रत्येक जीव के हृदय में मुझे देखता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा में करता है, भजत्येकत्वात्मा कि हर किसी के आत्मा में हृदय में परमात्मा के रूप में मुझे स्थित हुआ जो देखता है, सर्वथा वर्तमानो भी सयोगी मयि प्रवर्तते। सयोगी मयि वर्तते का मतलब होता है कि वो सदैव मुझ में रहता है। ऐसा योगी वास्तविक में योग की पूर्णता क्या है कि भगवान को हर जगह देखो, कृष्ण को हर एक वस्तु में देखो, और भगवान को और परमात्मा को अभिन्न समझो और उसी की भक्ति में लगे रहो, हृदय को उसी में। तो भगवान कहते वास्तविक योगी तो वही है, और क्योंकि भक्त को हर वस्तु कृष्ण की ही दिखती है, कृष्ण से रिलेटेड दिखती है, और अगर भक्त कभी कोई वस्तु को देखता है अलग, दूसरे लोग को भी देखता है कि वो कृष्ण के साथ रिलेटेड अपना रिलेशन नहीं उन्होंने अभी तक निर्माण किया, तो उनके लिए भी उसे दुख होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह से उन्हें कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा, कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए उनको, भक्तों को उन व्यक्तियों के ऊपर दया आती है, वो दुख करते हैं, वो हमेशा उनके कल्याण के लिए प्रयास करते रहते हैं कि कैसे उनको अपने कृष्ण से भूले हुए संबंध को पुनः याद कराऊं। एक बार श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में जा रहे थे, कार में बैठे हुए थे, तो वहां कार से देख रहे थे गार्डन में बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, कोई गेम खेल रहा था, कुछ लोग बेटबॉल खेल रहे थे, कुछ अपने अपने अफेयर्स में, कुछ मतलब लड़कियां लड़के सब वहां पर एंजॉय कर रहे थे। तो श्री प्रभुपाद जी उनको देखकर श्री प्रभुपाद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो भक्त जो श्री प्रभुपाद जी के साथ कार में थे, श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आपको रोना क्यों आ रहा है, तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट सी हाउ दोज पीपल आर सफरिंग। तो श्री प्रभुपाद जी है ना, उन लोगों ने कहा कि सफरिंग का है, इस लोग दुखी क्यों हैं, ये तो सब इतने हंस रहे हैं, खुश हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है कि ये दुखी हैं। श्री प्रभुपाद जी जानते थे कि वो जो उनका आनंद है वो किसके कारण है, भौतिक वस्तुओं के कारण, और जब तक उनकी भौतिक वस्तुओं के साथ इतना ज्यादा प्रेम है, इतना आनंद है, तो क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानते हैं और अज्ञानता के कारण भौतिक वस्तुओं को ही अपने आनंद का स्रोत मान बैठे हैं, तो वास्तव में यही आनंद उनके दुख का कारण बनेगा, और यही भाव रोग है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और शरीर की से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं को अपना समझ लेते हैं और इससे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है और हम कृष्ण के दास हैं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती तो यही भवरोग है। तो वास्तव में जो रियल योगी होता है वो आध्यात्म में स्थित हो जाता है। कृष्ण भावना में वो हर वस्तु को क्या सोचता है कि कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर एक वस्तु में उसको कृष्ण दिखता है। तो फिर आगे यहाँ पर श्लोक में बताते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, सुख दुख और मान अपमान। वास्तव में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और मान अपमान जो कुछ है वो क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, है ना। ये सब जो भी द्वंद्व है वो इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति को प्राप्त होते हैं। आत्मा का कभी अपमान नहीं हो सकता, आत्मा का कभी है ना सुख और दुख की कोई चिंता नहीं होती। आत्मा का कल्याण हो सकता है केवल कृष्ण भावनामृत से। और जब उसको ये समझ में नहीं आता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होती उसमें, तब उसको पता भी नहीं चलता मेरा हानि और ये या मेरा लाभ। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वो एक क्षण के लिए भी भौतिकता में अपना समय नहीं बिताना चाहती। क्या सोचती है कि नहीं, मेरा समय बहुत कीमती है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, बहुत आगे निकलना है, समय इतना थोड़ा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लेकिन ये सब द्वंद्व कब तक है, ये जो शीतोष्ण सुख दुख दुखेशु यथा मानो अपमानो क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को इस भौतिक जगत का एक हिस्सा समझते हैं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी अंत में अत्यंत सुंदर बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर हम इस भौतिक जगत के नहीं रहते, हम जान जाते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा रिश्ता केवल कृष्ण के साथ है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा दुख सुख सर्दी गर्मी मान अपमान से अप्रभावित होता, उसको ये सब की कोई ऐसे प्रभाव होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं होता है। भक्त क्या चाहता है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। फिर वो क्या सोचता है, अगर दुख मिलता है तो भगवान को कहता है ग्रेट आपका गिफ्ट है, थैंक यू कृष्ण। अगर सुख मिलता है तो भी भगवान को कहता है ये भी आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सुखों को धिक्कारता है या दुखों को निग्लेक्ट करता है, हर एक चीज को क्या समझता है, ये कृष्ण का गिफ्ट है, मैंने कृष्ण की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो उस सेवा की बदले में ये मुझे कृष्ण ने दुख भी इसलिए दिया है कि मैं और भी कृष्ण के करीब आ सकूं। ये कृष्ण जो मुझे आज कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या मुझसे कुछ छीन रहे हैं तो ये इसके कारण है, ताकि मैं भौतिक वस्तुओं में ज्यादा आसक्ति ना मेरी उत्पन्न हो सके। क्योंकि जितना मेरे पास भौतिक वस्तुओं को जमा करूंगा उतनी आसक्ति होगी, जितने व्यक्तियों के साथ दोस्ती होगी, तो भले ही कोई अगर मान अपमान भी कर देता है, बल्कि अपमान करता है कोई, तो उसे और भी कृष्ण याद आते हैं और कहते हैं वाकई में भौतिक जगत में कहीं आनंद नहीं, कृष्ण केवल तुम्हारे नाम में है। और अगर ना धन प्राप्त होता है तो भी वो खुश होता है, भगवान का गिफ्ट है क्योंकि मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और अगर नहीं प्राप्त होता है तो भी बोलता है भगवान तुम्हारी कितनी कृपा है कि तुमने ये धन दौलत के झंझट से मुझे दूर रखा है, अभी कुछ है ही नहीं तो संभालने का भय भी नहीं है, तो पूरा ध्यान जो है वो तुम में लगाओ, वरना इन वस्तुओं भौतिक वस्तुओं में मेरा मन लगता है। तो भक्त क्या है, हर एक चीज में इक्विमिनिटी हो, एकत्व में आ जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो हर वस्तु में भगवान की कृपा को देखता है और कहता है थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, आई एम विलिंग टू डू व्हाट एवर यू वांट, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट यू आर have better plans for me, and I know your plans are more better than my dreams. भगवान तुमने जो योजना बनाई है मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ख्वाबों से वो अत्यधिक उच्च है, और तुमने जो कुछ भी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ये मौजूदा जो पल है, जो वर्तमान समय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो समय कितना ही दुखमय क्यों न हो, कितना ही सुखमय क्यों हो, तो भक्ति के द्वारा हम पूर्ण योगी बन सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि मैं भगवान की अच्छी सेवा कर सकूं और गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।